प्यारे बाबा ने हमको तपस्वी मूरत बना दिया, अपने ही जैसा हमको खूबसूरत बना दिया, खूबसूरत बना दिया। प्यारे बाबा ने हमको तपस्वी मूरत बना दिया, अपने ही जैसा हमको खूबसूरत बना दिया, खूबसूरत बना दिया।
आदरणीय राजू भाई जी का हम स्वागत करते हैं। आप 1960 में ज्ञान में आए और 1972 में आपने अपना जीवन ईश्वरीय सेवा में यहाँ पांडव भवन में ही समर्पित किया। वैसे मुरली डिपार्टमेंट और फोटो स्टेट डिपार्टमेंट आप पांडव भवन में संभालते हैं। फोटो स्टेट डिपार्टमेंट तीनों ही कैंपस में, शांतिवन और ज्ञान सरोवर में भी आप ही संभालते हैं। ग्राम विकास प्रभाग के आप हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर हैं। बाबा की जब मुरली चलती है तो उसको साथ साथ बिल्कुल टाइप करते हैं और उसी समय वो पूरे विश्व में पहुंच जाती है। बाबा ने आपको दिव्य बुद्धि का वरदान दिया हुआ है और मुरली में जो सार, प्रश्न उत्तर, वरदान, स्लोगन्स आते हैं वो सेवा आप मनमोहिनी दीदी के समय से, दीदी के साथ मुरली कंपोज करते थे तब से आप ब्राह्मण परिवार की उन्नति के लिए ये सेवा कर रहे हैं। और पत्र पुष्प भी जो निकलता है वो पत्र पुष्प में अव्यक्त इशारे, दादियों के क्लासेस और भी अनेक जो प्रेरणाएं, समाचार, वो सारा प्रकाशन जो है वो राजू भाई जी करते हैं। आप ऐसे काफी ब्राह्मण परिवार की उन्नति के लिए क्लासेस कराना, प्रवचन करना, विदेशों में भी अनेक स्थानों पर आप गए हैं, तो काफी अनुभवी हमारे सामने आज क्लास कराने के लिए बैठे हैं आदरणीय राजू भाई जी।
ओम शांति। संगम युग पर पांडव भवन, बाबा की चरित्र भूमि, तपस्या भूमि, कर्म भूमि में भट्टी करने का सौभाग्य मिलना बहुत बड़ा भाग्य है जो आप सबने लिया है। ये चरित्र भूमि जहाँ पर मम्मा, बाबा, दीदी, दादी सभी महारथियों ने तपस्या की, मैं समझता हूँ यहाँ योग लगाने की मेहनत नहीं करनी पड़ती। करते हैं, स्वतः सहज योग लग जाता है। जिधर जाते हैं उधर बाबा की यादगार है, चारों धाम की सैर करते हैं। तो मुझे आज टॉपिक दिया गया तीव्र पुरुषार्थ क्या है और उसके द्वारा संपन्न और संपूर्ण कैसे बने। नेचुरल और सत्य योग जब होता है तो यही तीव्र पुरुषार्थ है, क्योंकि हम सब जानते हैं जब से बाबा के बच्चे बने पुरुषार्थी तो सभी हैं, और कुछ न कुछ लक्ष्य लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। दिनचर्या जो बाबा ने बनाई है अमृत वेले से रात्रि तक उस पर अटेंशन रखते हैं। जो श्रीमत बाबा की मुरलियों में मिलती है उस पर भी ध्यान देकर चलते हैं। हर एक ब्राह्मण के अंदर ये रहता है कि बाबा जो कहता है वो मुझे करना है। फिर भी समय अनुसार बाबा भी बहुत फास्ट गति का प्रसार चाहता है। बच्चे, समय की गति बहुत फास्ट है और फास्ट गति में तुम बच्चे भी अपने पुरुषार्थ की गति को और फास्ट करो, तीव्र करो। क्या तीव्र करेंगे, सवेरे 4 बजे के बजाय 2 बजे उठें, क्या करें? बाबा हम सबको सहज योगी बनाते हैं, स्वतः योगी बनाते हैं, ऐसी हठ क्रियाएं भी नहीं सिखाते हैं, नींद त्याग दो, भोजन त्याग दो, ये तीव्र पुरुषार्थ नहीं है। लेकिन तीव्र पुरुषार्थ बाबा तभी यूज करते इस शब्द को कि बच्चे कोई भी बात आती है उसको एक सेकंड में पास कर लो, पार हो जाओ। तीव्र पुरुषार्थ का अर्थ है उड़ती कला। पहले बाबा ने चढ़ती कला का ज्ञान दिया, चढ़ती कला के बाद हाई जंप का ज्ञान दिया, रेस करने की बात की, और अब समय प्रमाण उड़ती कला की बात कहते हैं कि बच्चे एक सेकंड में बीती को बिंदी लगाओ और पार हो जाओ। क्योंकि कलयुग के अंदर अंतिम समय के कारण अनेक बातें अति के रूप में आ रही हैं, हिसाब किताब भी सब फास्ट गति से चुक्त हो रहे हैं। जो भी रहे हुए 63 जन्मों के पाप कर्म हैं उनको भी दग्ध करने का यही समय है, और अचानक के खेल ऐसे ऐसे प्रकृति के द्वारा, अनेक ग्रह युद्ध के द्वारा, अनेक प्रकार के टकरावों के द्वारा इस सृष्टि की अचानक की गति को भी हम सब देख रहे हैं। अचानक क्या होगा, बाबा कहता बच्चे अचानक के पहले एवर रेडी रहो, कुछ भी हो सकता है। जैसे अभी सब तरफ एक ही न्यूज है कश्मीर की, कहते हैं स्वर्ग जैसा भूमि, कश्मीर को स्वर्ग कहते थे ना, अभी वो बिल्कुल नरक बनी हुई है। कितने लोग फंसे हुए हैं, कितनी तबाही है, कितना पानी के बीच में पीने के लिए पानी नहीं है, और अभी सबसे बड़ा खतरा है महामारी का, क्योंकि कितने समय से एक मंजिल दो मंजिल डूबी रही है, तो कितने पशु कीड़े मकोड़े जानवर मरे हैं, तो उसके बीच में जो लोग रहे हुए हैं बचे हैं उनके जीवन को खतरा है। इसलिए सरकार भी बहुत ध्यान दे रही है, लोक समाज से भी संस्थाएं भी लगी हुई हैं, और पानी को मोटरों से निकाल रहे हैं, कैसे भी करके पानी हटे तो फिर बात आगे बढ़े, क्योंकि वो बीच में जैसे भर गया है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स अचानक घटनाएं घट रही हैं, प्राकृतिक आपदाओं के द्वारा और आपसी टकराव जो हम सुन रहे हैं, अनेक देश एक दूसरे को रोज कोई न कोई नई आंख दिखाता है। तो बाबा हम बच्चों को कहता है बच्चे समय की गति बहुत फास्ट है, और अंतिम समय के पहले तुम बच्चों को अपनी संपन्न संपूर्ण कर्मातीत स्टेज बनानी है। ऐसे नहीं अंतिम सीन आ जाए और हम सब मूर्तियां अपने को सजाने में तैयार करने में लगी रहे। पर्दा खुलेगा, और पर्दा खुलने के साथ साथ हम सब सजे सजाए संपन्न मूर्ति में होने चाहिए। अगर उस समय कोई अपने को सजने लगे तो भी क्या कहेंगे लोग, बाबा भी क्या कहेगा, इतने समय से मैंने बच्चों का श्रृंगार किया और अभी तक ये अभी अपने को तैयार नहीं कर पाए। इसलिए तीव्र पुरुषार्थी शब्द जब बाबा प्रयोग करते हैं तो तीव्र पुरुषार्थी माना ही समय पर बाबा की शिक्षाएं, बाबा की श्रीमत, बाबा की धारणाएं, जो बाबा ने सिखाया है वो याद आ जाए। कोई भी बात आई, पेपर आया, परिस्थिति आई, उसी समय उसका हल दिखाई दे कि ये कर लो ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे करो ऐसे होगा। तो बाबा की टचिंग को कैच कर सके आत्मा, उसके लिए बहुत बुद्धि की स्वच्छता चाहिए, बहुत क्लीन और क्लियर बुद्धि चाहिए, ताकि बाबा कहे और मैं कर लूं। बाबा की शिक्षाएं याद आ जाएं कि बाबा ने ये विधि बताई है, ये युक्ति बताई। जैसे जब स्टूडेंट कोई पेपर हॉल के अंदर जाता है, बहुत समय से स्टडी की है, लेकिन पेपर हॉल के पेपर के समय टीचर उसको मदद करने के लिए सामने नहीं आएगा, वो तो साक्षी हो जाएगा, वो देखेगा इसने कितना पढ़ाई की है। और अगर उसकी माइंड की बहुत अच्छी स्थिति है, पढ़ाई को स्मृति में लाया हुआ है, तो पेपर आएगा और बात याद आ जाएगी, इसका उत्तर ये है, इसका उत्तर ये है, इसका उत्तर ये है। उसको कहेंगे इसकी बुद्धि में फास्ट निर्णय करना आता है। तो बाबा भी हम सबको कहता है, बच्चे पेपर तो अचानक के हर घड़ी हर एक के सामने आ सकते हैं। दादी जी हमेशा एक शब्द प्रयोग करती थी कि मैं अपने आप को सदा समझती हूँ मैं पेपर हाल में हूँ। कोई भी स्टूडेंट कभी भी मेरा टीचर बन करके, मेरा परीक्षक बन के मेरी परीक्षा ले सकता है। बाहर निकलते ही कई बातें ऐसी आती हैं जो न चाहते भी कोई ने कुछ बोल दिया, कुछ सुन लिया, कुछ कह दिया, वो पेपर का रूप हो जाता है। अगर मेरी स्थिति अच्छी नहीं है तो क्यों, क्या, कैसे, खुशी गायब हो जाएगी, उदासी आ जाएगी, वो पेपर में जैसे फेल हो गया। तो तीव्र पुरुषार्थी आत्माएं जो बहुत काल से पुरुषार्थ करती आ रही हैं, वो कोई भी बात आ जाए उसको बहुत सहज रीति से पार कर लेते। जैसे बाबा ने कल कहा था, कोई पहाड़ जैसा भी आ जाए, जो समझदार होता है उस पहाड़ को हथौड़ी लेकर के तोड़ता नहीं है, वो रास्ता क्रॉस करके चला जाता है। तो पेपर माना कोई ना कोई ऐसी बातें, ऐसी परिस्थितियां, ऐसी घटनाएं हमारे सबके सामने कोई ना कोई रूप में आएंगी, लेकिन अगर मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, मैंने तीव्र पुरुषार्थ किया है, तो बहुत जल्दी उसको जंप दे सकेंगे, उसको पार कर सकेंगे, बीती को सेकेंड में फुल स्टॉप लगा सकेंगे। जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता है वो उसी समय साथ दे, काम में आए। मान लो अभी जरूरत है सहन करने की, और सहन करने के बाद के बजाय मैं सामना करना शुरू कर दूं या उस बात को समाने लगूं, माना मैं उस समय जिस शक्ति की जरूरत है उस शक्ति का प्रयोग नहीं कर सका, तो फेल हो जाऊंगा। इसलिए तीव्र पुरुषार्थी आत्माएं पहले से हर शक्ति का आवाहन करके उनको अपने आप में प्रयोग में ले आती है। क्या होगा, कैसे होगा, कोई भी पेपर आए, मान लो आज कोई के सामने आता है, तो उस पेपर से हम सीख सकते हैं ये पेपर इसके सामने आया। आज मान लो वो पेपर मेरे सामने आ जाए, तो मेरी स्थिति क्या होगी, मैं हलचल में आऊंगा, मैं उसके लिए क्वेश्चन पूछूंगा, उसके लिए परेशान हो जाऊंगा, या कहूंगा नथिंग न्यू, जो हुआ अच्छा हुआ, पार हो जाऊंगा। तो इस प्रकार से अपने आप को तैयार रखना, एवर रेडी रखना, उसको ही बाबा कहता है तीव्र पुरुषार्थी। जो सोचा वो किया, प्लान प्रैक्टिकल, ऐसे नहीं प्लान तो बन रहे हैं बहुत लंबे लंबे, प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, सोच बहुत कुछ रहे हैं लेकिन प्रैक्टिकल में कुछ नहीं कर पाते, उसको तीव्र पुरुषार्थी नहीं कहा जाता है। तो तीव्र पुरुषार्थी बाबा उसको ही कहता है जो हर सेकंड अपने मन और बुद्धि को अपने नियंत्रण में रख करके उसको समय पर प्रयोग में लाए, कार्य में ला सके उन शक्तियों को, तब कहेंगे वो तीव्र पुरुषार्थी। इसलिए सोचना, बोलना और करना सब समान हो जाएंगे तो कहेंगे ये तीव्र पुरुषार्थी है। उसके अंदर कल पर छोड़ने का संस्कार नहीं होगा, नहीं तो कर लेंगे ना, हो जाएगा ना, अभी समय पड़ा है। तीव्र पुरुषार्थी आत्मा कल के ऊपर कुछ नहीं छोड़े। आज मान लो मुझे कोई शुभ संकल्प आया, मेरे पास तन की शक्ति है, मैं बाबा के काम में लगा दूं, कल किसने देखा कैसा होगा। मन की शक्ति है, बाबा के काम में लगा दूं, धन की शक्ति है, सफल हो जाए, कल के ऊपर छोड़ा, माना वो तीव्र पुरुषार्थी नहीं है, वो अलबेला है। तीव्र पुरुषार्थी के अंदर तीन बातें बिल्कुल ही नहीं आएंगी। एक आलस्य, ब्राह्मणों का सबसे बड़ा शत्रु है, अमृत वेला होगा, थोड़ा समय और पड़ा है, 10 मिनट है, 5 मिनट है, घड़ी देखते रहेंगे, आलस्य। और आलस्य के कारण और कई विकार पीछे पीछे उसके आ जाते हैं। दूसरा अलबेलापन, अलबेलेपन की भाषा क्या होती, कर लेंगे, हो जाएगा। अभी कौन बना है, किसने बनाया, बाबा तो कहता आठ ही पास होने वाले हैं, बाबा की बातों को ही लेकर के ढाल बना लेते हैं, उनको बाबा कहता है अलबेले हैं। और तीसरी है बहानेबाजी, हर बात में बहाना, आज इस कारण से योग नहीं हुआ, आज इस कारण से मुरली मिस हो गई, आज इस कारण से। लेकिन जो तीव्र पुरुषार्थी बाबा के बच्चे हैं, वो इन तीनों बातों से अपने आप को मुक्त रखते हैं, ना आलस्य है, ना अलबेलापन है, ना पुरुषार्थ के लिए कोई बहाना है। बाबा ने कहा है मुझे करना है, समय बहुत कम है, बाबा की बातों को अलबेलेपन में यूज नहीं करना है, इसलिए समय प्रमाण अपने आप को एवर रेडी बनाना ही तीव्र पुरुषार्थी की निशानी है। तो हम सब अपने आप को ये बहुत गहराई से चेक करें, क्योंकि जब पुरुषार्थ या स्पीड बढ़ाई जाती है, आपने देखा होगा कि अगर हम कोई साधन देखते हैं टाइम हो रहा है, गाड़ी पकड़नी है, प्लेन पकड़ना है, तो अपनी गाड़ी की स्पीड को बढ़ाते हैं, स्पीड को बढ़ाते हैं, तो स्पीड बढ़ाने वाले को कुछ बातों का बहुत ध्यान देना पड़ता है, नहीं तो जब स्पीड बढ़ती है तो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट होने की संभावना रहती है। इसलिए हमेशा मंजिल सामने है, पहुंचना है टाइम पर, लेकिन पहुंचने वाला इस बात का ध्यान रखता है। मान लो आपके पास अच्छी गाड़ी है, गाड़ी अच्छी है, और आप समझते हो स्पीड बहुत अच्छी यहाँ पर हो सकती है। जैसे एक बार की मैं आपको बात बताता हूँ, मैं दिल्ली से आ रहा था, अपनी गाड़ी में ही था, रास्ते में ज्यादा ट्रैफिक नहीं थी, फोर लाइन मिली, तो हमारे ड्राइवरों ने गाड़ी को भगाना शुरू किया कि हम बहुत जल्दी अभी जयपुर पहुंच जाएंगे। और जब स्पीड बढ़ाई तो स्पीड बढ़ाने के साथ साथ क्या ध्यान रखना पड़ता, सबसे ज्यादा पेट्रोल खर्च होता है, डीजल खर्च होता है, फुल है या नहीं है, क्योंकि जब स्पीड ज्यादा है तो खर्चा भी ज्यादा होगा, नेचुरल है। लेकिन उसका ध्यान उस पर नहीं था, सब प्रकार का कंट्रोल था, लेकिन पेट्रोल का ध्यान नहीं था कि इसमें फुल टंकी है या नहीं है। स्पीड बढ़ाई और बीच में आके अचानक रोक के कहता है भाई जी पेट्रोल खत्म हो गया, अब क्या करेंगे, अभी पीछे पेट्रोल पंप 3-4 किलोमीटर पीछे छूट गया है, अब आगे पता नहीं कहां मिलेगा। क्या हुआ, जितनी स्पीड बढ़ाई थी रुकना पड़ा, और फिर पीछे गाड़ी में बैठा, पीछे गया, गया जाकर के एक डीजल पेट्रोल भर के लाया, लाने के बाद डाला, तो जितनी हमारी स्पीड फास्ट आ रही थी उतना उससे भी डिले हो गए, लेट हो गए। तो कई बार हम पुरुषार्थ करना चाहते करते हैं, बहुत करते हैं, अच्छी तरह से करते हैं, स्पीड में करना चाहते हैं, बहुत अच्छी लगन है, कोई को नहीं देखते हैं, एक बाबा दूसरा न कोई, मैं तो बस शरीरी स्थिति में रहूं, आत्ममान स्थिति में रहूं, लगन लग जाती है, पुरुषार्थ फास्ट हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अगर मान लो जो ज्ञान योग के केंद्र बने हुए हैं, जो पेट्रोल स्टेशन है, उन स्टेशन का बीच में ध्यान नहीं रहता, केवल अपनी स्पीड पर ध्यान रहता है, तो क्या होगा, कभी खाली हो गए तो भरने के लिए बहुत टाइम देना पड़ेगा। इसलिए अगर स्पीड बढ़ानी है, तीव्र पुरुषार्थ के अंदर मंजिल पर समय पर पहुंचना है, तो सबसे पहले ध्यान रखना कि हमारा ज्ञान योग का पेट्रोल फुल होना चाहिए, ब्रेक बहुत पावरफुल होनी चाहिए। ब्रेक अगर ठीक नहीं है तो भी कहीं भी कोई चीज आ गई, कोई जानवर आ गया, कोई कुत्ता आ गया, कोई बिल्ली आ गई, तो क्या होगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, बहुत जबरदस्त एक्सीडेंट होगा। इसलिए बातें जो है ना, चूहे बिल्ली जैसी आएंगी सामने भी, चलने वाला स्पीड को फास्ट करने वाला ब्रेक बहुत पावरफुल रखता है। कौन सी ब्रेक है, ब्रेक तो तभी लगती है ना जब उसके पास पेट्रोल ठीक होता है, लेकिन एक ब्रेक के साथ साथ हमारे संकल्प बहुत फास्ट गति से चल जाते हैं, ये हमारी ब्रेक है। कोई भी पेपर आया, कोई भी बात आई, क्यों आई, कहां से आई, इसने क्यों लाई, उसने क्यों लाई, अनेक प्रश्नों में अगर बुद्धि को उलझा दिया फेल हो जाएंगे, बात आई है पूरी हो जाएगी। बाबा हमेशा हम बच्चों को कहता है, बच्चे कल्याणकारी ड्रामा में हर सीन में कुछ न कुछ कल्याण समाया हुआ है, इसलिए इस बात को बहुत पक्का करके इस ब्रेक को पावरफुल बनाओ। संकल्पों को जहां भी स्टॉप करना चाहे स्टॉप कर ले। आप लोग यहां 3 दिन की भट्टी में चेक करना, मेरे संकल्पों पर ब्रेक लगती है। अच्छी परिस्थितियों में ब्रेक लगाना बहुत सहज होता है, लेकिन जब अचानक कोई घटनाएं घटती हैं, अचानक कोई सीन आती है सामने, कोई ने कुछ कह दिया, कोई इंसल्ट हो गई, कहीं कोई घटना घट गई, कोई आपका नुकसान हो गया, कोई ने आपकी बात नहीं मानी, उस समय देखो मेरे संकल्पों को ब्रेक लगती है या चलते रहते। ऐसा क्यों कहा, इतना पुराना है, ये तो बाबा का ज्ञानी बच्चा है, इसने भी ऐसे बोल दिया, इसका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं। फिर रात भर कई बार वो संकल्प परेशान करते रहते, ब्रेक नहीं लगती। ऐसे समय पर जब ऐसी कोई घटनाएं घटती हैं आत्मा के साथ, अचानक कोई पेपर ले लेता है, उस समय अपने मन से बात करो, तुम अभी रुक सकता है, रुकेगा कि चलता रहेगा। दादी हमेशा एक शब्द यूज करती हैं, डोंट थिंक। मैं दादी से हंसी में कहता हूं, जानकी दादी से, दादी डोंट थिंक होता है क्या, सोचना ही नहीं है, सोचना ही नहीं है। लेकिन सोचने का संस्कार तो संकल्प में है ही, वो तो संकल्प तो चलता ही है, सारा कल्प भी चलता है, तभी उसका नाम संकल्प है। चलने के बिना तो रह ही नहीं सकता। लेकिन डोंट थिंक का अर्थ क्या है, जो काम की बात नहीं है, जो मेरे काम की बातें नहीं है, मुझे वो नहीं सोचनी है, बस जो बीत गई है वो बीती का चिंतन मुझे अब नहीं करना, वो रील लिपट गई। लिपटी हुई बात को बार बार रिवाइज करके देखना, उस पर वर्णन करना, उसको सोचना, माना टाइम एनर्जी सब कुछ वेस्ट करना। इस बात को बहुत अंडरलाइन करना कि कई ब्राह्मण आत्माएं बीती बातों को बहुत लंबे रूप से विस्तार करके सुनती और सुनाती हैं, उसमें बहुत समय और शक्तियां नष्ट हो जाती हैं। अगर कोई मंजिल का राही फास्ट गति से जाना चाहता है तो ध्यान रखता है कहीं रास्ता चेंज न हो जाए। अगर आप स्पीड में जा रहे हो और आपका साइन बोर्ड के ऊपर ध्यान नहीं है कि रास्ता इधर से कट रहा है या इधर से कट रहा है, और स्पीड आपकी बहुत फास्ट जा रही है, 8-10 किलोमीटर जाने के बाद आपने सोचा कि मैं पूछ तो लूं कहीं रास्ता गलत तो नहीं है, और उस समय आपको किसी ने कह दिया भाई आप तो 10 किलोमीटर आगे आ गए, आपका पीछे रास्ता है। मैं समझता हूं सबसे ज्यादा जो संकल्प चलते हैं वो वहां पर चलते हैं कि हम इतनी स्पीड में आए, इतना पेट्रोल भी खर्च किया और अब मुझे वापस जाना पड़ेगा। कई ब्राह्मण आत्माएं कई बार रास्ते को मोड़ देती हैं। श्रीमत बिल्कुल हाईवे है, श्रीमत बाबा की मुरली से मिल रही है, क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन कईयों के विचारों का प्रभाव मनमत से परमत से इतना अच्छी तरह से पड़ जाता है आत्मा के ऊपर, जो हम उन विचारों के प्रभाव में आकर के अपने हाईवे को उस तरफ मोड़ देते हैं। थोड़ा सा ध्यान देना, गहरी बात सुना रहा हूं। कई ब्राह्मण आत्माएं ऐसे हैं, श्रीमत क्या कहती है मुरली स्पष्ट है हमारे आगे, लेकिन मैंने व्यक्तिगत रूप से अपना चिंतन आपके आगे रखा और आपको बड़ा अच्छा लगा, आप उस पर प्रभावित हो गए, ये बहुत अच्छा भाई का चिंतन है, तो बहुत अच्छी बात है। श्रीमत क्या है उसको भूल करके मेरी मत के अनुसार आपने पुटसारा शुरू किया, माना आपने हाईवे को छोड़ के गलियों को पकड़ना शुरू कर दिया, और गलियों में जाओगे तो धक्के तो लगेंगे ही, स्पीड नहीं बढ़ेगी, फास्ट स्पीड नहीं हो सकती। इसलिए ध्यान देना कि बाबा की मुरली माना श्रीमत, केवल एक मुरली ही श्रीमत है, कोई भी आत्मा कितनी भी महान हो, लेकिन वो मत जो दे रही है वो कुछ न कुछ उसके अंदर मिक्स हो सकता है, मन मत भी मिक्स हो सकती है, इसलिए इतनी बुद्धि की लाइन क्लीन हो, क्लियर हो, जो आपको टच हो, ये राइट है, ये रॉन्ग है, ये करना है, ये नहीं करना है, मुझ न जाए बुद्धि, उलझ न जाए, नहीं तो वो सारा समय सारी शक्तियां नष्ट होती और कोई न कोई ऐसी गली में चले जाते। कई बार ऐसे होता है, हमारे मान लो कोई क्लास कराने वाले भाई बहने क्लास अपना कराते हैं, कोई ऐसी बुद्धि का चिंतन, ऐसा मंथन सुना देते हैं। अभी अभी मैं एक जगह गया था, एक भाई सामने बैठा था, मेरा क्लास चल रहा था, हमने कहा बाबा प्यार का सागर है, आप प्यार में समाना सीखो, यही योग है। जब ये कहा तो उसके बाद वो तुरंत प्रश्न करने लगा, भाई जी एक भाई अभी थोड़े दिन पहले यहाँ आया था, उसने कहा ये बाबा प्यार का सागर नहीं है। हमने क्या कहा था, हमको क्या पता किसने क्या कहा, बोला बाबा उसने कहा को तो निर्गुण है, वो कोई गुण है ही नहीं उसमें। हमने कहा ये किसी की मत का प्रभाव हो सकता है, योग तो बाबा ने यही सिखाया है, तुम प्यार में समा जाओ। बाबा के कई ऐसे बच्चे अपना चिंतन अपना मनन करके क्लासेस कराते हैं और उसके आधार से कई लोग फिर कई प्रकार के प्रश्न उठाते हैं, बाबा ने ये कहा है, ये कैसे है, ये कैसे है। इसलिए सदा ब्राह्मण जीवन में तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को बार बार मुरली का अध्ययन करना चाहिए। मुरली में क्या है, श्रीमत क्या है, बाबा क्या कहता है, और बाबा की मुरली से अगर कोई आत्माएं अपना चिंतन सुना भी रही हैं, तो उसको भेंट करके जो बाबा कहता है वो करना है, आत्माओं के चिंतन के प्रभाव में नहीं आना, नहीं तो उन गलियों में कभी कभी भटक जाएंगे। इसलिए हम कोई भी आत्माएं सुनाती हैं, बाबा की बातें अगर सुनाते हैं, अनुभव की कोई बातें सुनाते हैं, वो अलग बात है, लेकिन श्रीमत में भी कई बार मन मत मिक्स हो जाती है। इसलिए बाबा हम सबको चार शब्द देते हैं, चार धारणाएं हमारे जीवन की होनी चाहिए। एक तो निमित्त भाव है, हम बाबा के ज्ञान को उसी तरह से वर्णन करें जिसमें कहीं भी मेरी बुद्धि मिक्स न हो। निमित्त रूप से बाबा ने इंस्ट्रूमेंट बनाया है, मैं बाबा का राइट इंस्ट्रूमेंट बन करके रहूं। बाबा की मुरली को इतना अच्छी तरह स्टडी करो, मनन करो, चिंतन करो, वही स्वरूप में आ जाए। उसको सिद्ध करने के लिए कोई भी बाहर की कहानियों का, दृष्टांतों का, बातों का मिक्स करके सुनाने की जरूरत नहीं है। यह है निमित्तपन का भाव। और जब कोई निमित्त आत्माएं बाबा की बात को सुनाती हैं, तो कभी भी ये नहीं आता ये मेरी बुद्धि की कमाल है, मैंपन नहीं आता उसके अंदर। एकदम दिखाई देता है कि इस आत्मा ने बाबा की बात जैसे मेरे तक पहुंचाई और ये न्यारा हो गया। उसको न मान चाहिए, न शान चाहिए, न पोस्ट पोजीशन चाहिए, न कोई चीजें चाहिए। बाबा की बातें यहां से ली, इसने धारण की, इधर सुना दी। निमित्त भाव, जिसके अंदर जरा भी मैंपन का अभिमान न आए और उसमें निर्माणता दिखाई दे। जो जितना निमित्त भाव से ज्ञान सुनाता, सुनता, धारण करता है, सेवाएं करता है, उसमें निर्माणता का गुण स्वतः आ जाता है। बहुत नम्रचित, इतना निरहंकारी जैसे बाबा की मुरलियों में ब्रह्मा बाबा का चिंतन है। क्योंकि बाबा कई बार कहते थे ब्रह्मा माँ भोजन बना रही है। सवेरे सवेरे कोई उनसे मिलने जाता था बाबा से, तो बाबा कहते थे बच्ची बच्चों के लिए भोजन बना रहा हूँ, बाद में बात करूंगा। माना शिव बाबा को भोजन बनाने की जरूरत नहीं है, मनन चिंतन करने की जरूरत नहीं है, माँ बच्चों के लिए भोजन बनाते। तो ब्रह्मा बाबा ब्रह्मा माँ के रूप में सवेरे खूब अच्छा विचार सागर मंथन करते थे और विचार सागर मंथन करके फिर मुरली सुनाते थे। उसमें बीच बीच में शिव बाबा भी ज्ञान के कुछ राह सुना देते। लेकिन बाबा की मुरली में कहीं पर भी ये शब्द नहीं आया कि मैंने बड़ा अच्छा चिंतन किया, मेरा मंथन है, मैं सुनाता हूँ, बच्चे इसको याद नहीं करना, इसने कुछ नहीं किया, ये कुछ नहीं करता। इतना नम्रचित, इतना निरहंकारी जो अपने आप को छिपा करके और नरश्री नारायण बन गया। ब्रह्मा बाबा ने इतना ऊंचा पद पाया, कैसे पाया? बिना कर्म कर्म किए, कर्म किए है ना, तब तो इतना ऊंचा पद मिला है। लेकिन उन कर्मों में कहीं भी दिखावा नहीं है, बहुत गुप्त रीति से। साकार में भी बाबा ने जब समर्पित किया अपने आप को, किसी के आगे वर्णन नहीं किया कि मैंने इन बच्चों को 14 साल तक अपनी प्रॉपर्टी से पाला है। बाबा की प्रॉपर्टी समर्पित हुई थी, थे उनके साथ और भी 2-4 लोग, लेकिन बाबा ने जो कमाया था, जो उनका बिजनेस था, वो समेटा और सब कुछ ट्रस्ट में दे दिया। उसी से इतना बड़ा परिवार 14 साल तक पलता रहा। बाबा ने कभी वर्णन नहीं किया कि मैंने इतना दिया। देने के बाद कभी अहंकार नहीं दिखाया, कभी पैसे को देखा भी नहीं, कहाँ यूज हुआ, कैसे यूज हुआ, किसने क्या किया, कभी बाबा ने हिसाब नहीं पूछा। इतना नम्रचित होकर के रहा जो एकदम अपने आप को छिपा लिया। और इसके कारण उनकी वाणी में निर्मल हो गई, वाणी निर्मल हो गई। कभी भी वाणी के अंदर मैंपन की झलक नहीं दिखाई थी। कई बार कोई ऐसा करता है ना, तो वैसे बहुत नम्रचित बनेगा, झुक करके चलेगा, सलाम करेगा, नमस्ते करे, लेकिन वाणी के अंदर कहीं ना कहीं उसका मैपन दिखाई देगा, वर्णन में आ जाएगा, मैंने ये किया, मैं ये करता हूं, मैं ये किया। लेकिन वाणी बहुत निर्मल, बहुत सम्मानदायक। अगर बाबा की कोई ने महिमा की तो बाबा ने कहा नहीं, बच्चों ने किया है, इसने किया, इसने किया। अपने ऊपर कभी भी बाबा ने अपनी महिमा स्वीकार नहीं की, या बाबा कराता है या बच्चे करते हैं, ये कुछ नहीं करता है। इसमें वाणी के अंदर मधुरता आ गई, सरलता आ गई। वाणी कभी भी कोई के लिए ऐसी नहीं निकली जो किसी को दिल को ठेस पहुंचा दे, दर्द पहुंचा दे। तो जितना निमित्त उतना निर्माण, उतना ही निर्मल वाणी। और सदा ध्यान रखा मुझे निर्वाण में जाना है, वाणी से परे जाना है। तो ये 4 बातें प्रैक्टिकल जीवन में ब्रह्मा बाबा ने धारण करके हम सबके सामने एग्जाम्पल रखा और इतनी तीव्र गति से पुरुषार्थ किया जो समय के पहले संपन्न बन करके हम सबकी पालना और सेवा कर रहे हैं। चक्र के बीच से चक्र घूम रहा है, अभी चल रहा है, लेकिन उसके ऊपर टॉप की स्थिति पे पहुंच गया और वहां बैठ करके बच्चों की सेवा कर रहा है। चक्र में फिर से नहीं आया। ब्रह्मा बाबा ने ये पुरुषार्थ किया तीव्र कि कोई भी बात हुई, बहुत विस्तार की बातों को सार में लिया, नथिंग न्यू, कोई बड़ी बात नहीं है, कभी उसकी हलचल नहीं, कभी उसका वर्णन चिंतन नहीं, कोई विस्तार कर रहा है उसको भी पुलिस स्टाफ लगवा दिया, छोटी बात को बड़ा नहीं बनाया। तो ये विस्तार जितना भी है, सेवाओं का है, समस्याओं का है, अनेक प्रकार की बातों का है, अगर मैं आत्मा सुनते हुए भी उस विस्तार को सार में समा करके, उसके सार को समझ करके चलूं, तो हमारा पुरुषार्थ स्वतः तीव्र हो जाएगा। और हमेशा एक बात का ध्यान रखना, तीव्र पुरुषार्थ के लिए जब कोई रेस करता है, तो पहले जमाने में रेस के घोड़े देखे होंगे, देखें रेस के घोड़े देखें, अभी तो कम है, लेकिन पहले जमाने में जब रेस के घोड़े रेस कराते थे घोड़ों को, तो घोड़े के दोनों तरफ पट्टी बांधते थे ऐसे आंख के साथ कि वो कहीं भी इधर उधर नहीं देखे, नहीं तो गिरा देगा, नुकसान कर देगा, फास्ट स्पीड से नहीं पहुंचेगा। इसलिए बाबा भी हम बच्चों को कहता, बच्चे अगर तुमको अपनी स्पीड बढ़ानी है तो ये पट्टी बांध लो, इधर उधर नहीं देखना, साइड सीन, कोई कुछ भी कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, अगर साइड सीन को देखना शुरू कर दिया तो स्पीड ठहर जाएगी, फास्ट नहीं जा सकोगे, बहुत नुकसान हो जाएगा। इसलिए अगर समय पर मंजिल पर पहुंचना है, अपनी कर्मातीत स्टेज को प्राप्त करना है, संपन्न संपूर्ण बनना है, तो किसी भी कोई भी कुछ भी कर रहा हो, मुझे उसे नहीं देखना है। जो कर रहा है अपने लिए कर रहा है, उसका कोई हिसाब किताब है, उसका वो पार्ट है, मैं देख करके अपनी बुद्धि को खराब न करूं, अपनी बुद्धि को विचलित न करूं। अगर मेरे को अपनी स्पीड बढ़ानी है तो, नहीं तो जहां हूं है ठहरा, ठहर गया। तो बाबा हम सबको समय अनुसार ऐसी ऐसी बातों का ध्यान खिंचवा रहे हैं, ताकि कोई भी बातें आएंगी तो जरूर, जहां संगठन है, जहां परिवार है, जहां हम क्लास ले रहे हैं, जहां हम सेवाएं दे रहे हैं, वहां बातें तो आएंगी, नहीं आएंगी, आएंगी। स्वभाव, संस्कार, पुराने शरीर के हिसाब किताब, भटकती हुई आत्माओं के हिसाब किताब, अंत समय में सब बाहर निकलने वाला है। और जब सब बाहर निकलता है तो कई ब्राह्मण आत्माएं दिल से कष्ट हो जाती है, समझती मेरे आगे ही बातें क्यों आती है, मैंने कौन से ऐसे पाप किया, मैं तो, कोई कोई प्रश्न करते ना, मैं तो इस जन्म में कुछ किया ही नहीं, फिर ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ। बाबा कहता बच्ची ये भी प्रश्न मत करो, कुछ तो किया है, आज नहीं पिछले जन्मों में किया होगा, कभी तो बीज डाला है, बीज निकला कहां से, अंकुर कहां से आ गया बिना बीज के। तो कोई जन्म में भी कोई किसी के साथ हिसाब किताब बना होगा, जो अभी अंतिम जन्म में वो निकल के बाहर आ रहा है। इसलिए कोई भी प्रकार के पेपर में प्रश्नात्मक बुद्धि की बजाय उसमें कल्याण का रास्ता छिपा हुआ क्या है, उस रास्ते को निकाल करके अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनानी है मुझे, बस। अब उसके लिए मैं आपको 15 मिनट में पूरे ज्ञान का हिस्से सुनाता हूं। तीव्र पुरुषार्थी अगर ए बी सी डी चार शब्द याद रखना, सहज रीति से तीन तीन बातें इसके अंदर आएंगी, अगर अटेंशन रखेंगे तो आपका पुरुषार्थ अपने आप फास्ट होता जाएगा, कोई से पूछने की जरूरत नहीं मेरा पुरुषार्थ है या नहीं है। ए से जितना समय हो सके अभी अंतर्मुखी रहो, बाह्य मुक्ता में मुझे नहीं आना है, अंतर्मुखी सदा सुखी। बाहर की चीजें देखते हुए, बातें सुनते हुए, कोई भी बात सुनाता है, बाह्य मुक्ता को मैं पसंद न करके अंतर्मुखी रहूं, अंदर अंदर अपने को देखूं, अपने से बातें करूं, अंदर जा करके अपने आप को सुधारूं, अपने आप को पढ़ाऊं। अंतर्मुखता की बहुत गहरी परिभाषा है। तो एक अंतर्मुखी, दूसरा जितना हो सके अव्यक्त स्थिति। अव्यक्त स्थिति उसको कहते हैं जो व्यक्त में रहते ही भी व्यक्त बातों का प्रभाव न पड़े, अव्यक्त। क्योंकि जितने विघ्न आते हैं वो आते हैं व्यक्त और व्यर्थ बातों के कारण। जिस स्थान पर व्यक्त और व्यर्थ बातें चलती हैं, वही स्थान अनेक विघ्नों का घर बनता है, चाहे आपका लौकिक स्थान है चाहे सेवा स्थान है। अगर उस स्थान पर रूहानियत का अव्यक्त अलौकिक वातावरण है तो कोई विघ्न नहीं आएगा, ठहरेगा नहीं, आएगा तो चला जाएगा। इसलिए स्थान के वातावरण को अव्यक्त अलौकिक, अपनी स्थिति को अव्यक्त बना करके रखना है। और तीसरी बात है जितना समय मिले इस शरीर से डिटैच अशरीरी स्थिति का अभ्यास करो। आसे तीन बातें, अंतर्मुखी, अव्यक्त और अशरीरी। बासे कुछ भी कर्म कर रहे हो, बाबा कराने वाला, करण करावनहार, उसकी लीला चल रही है। मैं दादी बड़े अच्छे शब्द कहती हैं, प्रभु लीला चल रही है, इतनी सेवाएं हो रही हैं, चारों तरफ से सेवाओं की धूम है, और बाबा गुप्त है, दादियां गुप्त हो गई, काम बाबा के सब चल रहे हैं, कौन करा रहा है सब, प्रभु लीला है ना ये सब। कोई बड़ा नहीं है, कोई दादियां मिलने वाली नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है, कोई डायरेक्शन देने वाला भी नहीं है, फिर भी सब कारोबार अपने आप फास्ट गति से चल रही है। कौन करा रहा है? बाबा करा रहा है। ऐसे लौकिक जवाबदारियां, लौकिक जिम्मेवारियां निभाते हुए भी सदा बाबा बाबा बाबा, आप जो करा लो, मैं आपका इंस्ट्रूमेंट, राइट इंस्ट्रूमेंट बन के रहूं, आप इससे द्वारा जो करा लो बस। एक बाबा सदा ध्यान पर रहे, दूसरा बेहद में रहो, हदे नहीं डालो, ये मेरी एरिया, ये मेरा सेंटर, ये इसका सेंटर, ये इसका, इस हदों के कारण बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। अरे सब बाबा के हैं, सब बेहद का है। नियम कुछ ऐसे रखे जाते हैं ताकि टकराव की स्थिति न बने, लेकिन हदें बना करके अपनी बुद्धि को लिमिटेड रख लेना, एक दूसरे को सहयोग न देना, एक दूसरे को साथ न देना, ये बहुत बड़ी बाबा की इंसल्ट है। इसलिए बेहद की वृत्ति, बेहद की भावनाएं रख करके बाबा के कार्य को संपन्न करना है। जहां हम नहीं पहुंच सकते, अगर कोई आ रहा है भले सेवा करे ना, क्यों हम बंधन डालें कि ये एरिया मेरी है, मैं भी नहीं जा सकता और दूसरे को भी वहां आने नहीं देता। बेहद में रहना ताकि कोई भी बात आए, बाबा ये न कहे बच्चे तुम भी नहीं किया और दूसरे को भी नहीं करने दिया। बेहद में रहो। और तीसरी बात है, जितना समय मिले वैराग्य बेहद का, बेहद का वैराग्य ही हमारे परिवर्तन का आधार है। अगर सचमुच मैं अपने आप को चेंज करना चाहता हूं, कोई भी त्याग बिना वैराग्य के नहीं होता। जब तक इन बुराइयों से, इन विकारों से, इन संबंधों से, इन पदार्थों से वैराग्य किसी व्यक्ति को नहीं आया, तब तक उसको छोड़ नहीं सकता, छूटेगा नहीं। भले डाली पे बैठ के कहता है छुड़ाओ छुड़ाओ छुड़ाओ, कौन छुड़ाएगा उसको? जिस दिन वैराग्य आएगा उस दिन छुट जाएगा। इसलिए बेहद का वैराग्य, बेहद की भावनाएं और बेहद की बाबा की स्मृति। ठीक है, बासे तीन बातें, सासे सदा ध्यान रखना, हमें सम्मान दाता बन करके रहना है, स्वमान में रहो, सबको सम्मान दो, मांगो नहीं, मुझे मान दे, मैं इतना करता हूं मुझे कुछ मिलना चाहिए। जहां स्थितियां नीचे ऊपर होती हैं, उसका एक मूल कारण है हम मंगता बन जाते हैं देवता के बजाय, देवता के बजाय। हम सब देवता बनने वाली आत्माएं हैं, क्यों मांगें किसी से? बाबा हमको इतना सम्मान दे रहा है, इतने ऊंचे ऊंचे टाइटल देता है, कल के व्यक्त मुरली पढ़ो, आपको सम्मान दे दे करके बाबा ने कहां बिठाया, क्या सम्मान दिया है। उस सम्मान में रहो, सम्मान दाता बन करके जो संबंध संपर्क में है उसको सम्मान देते चलो, देते चलो, देते चलो। और जितना संगठन में हम रहते हैं, बाबा हम सबको कहता बच्चे तुम्हारे पास जो कुछ है वो बहुत कुछ है, संतुष्ट रहना सीखो। कई बार हम आत्माएं दूसरों से भेंट करके अपने आप को असंतुष्ट अनुभव करती है, इसके पास इतना है, इसके पास इतना है, और फिर अपने को उस तरह पहुंचने के लिए, वो प्राप्ति करने के लिए कई गलत कदम उठा लेते हैं। इसलिए बाबा हमको कहता बच्चे संतुष्ट मणि बनो, जितना बाबा ने आपको दिया है ज्ञान से, गुणों से, शक्तियों से अपने आप को भरपूर कर लो, स्थूल तो साधन सुविधाएं अपने आप आ जाएंगी, उसके पीछे क्यों भागते हो, क्यों भटकते हो? तो संतुष्टता एक बहुत बड़ा गुण है, जिस गुण को धारण करके मुझे इस पुरुषार्थ में तीव्र जाना है। और तीसरी बात है सफल करना है, जो कुछ बाबा ने दिया है, तन मन धन समय विशेषताएं जो मेरे पास हैं, मैं इन्हें सफल कर लूं, सफलता मिल जाएगी। सदा एक स्लोगन लिख के रखो, सफल करने से सफलता मिलती है, ऐसे सफलता नहीं मिलती। तो हम अगर अपना सब कुछ सफल करते चलेंगे, कुछ भी व्यर्थ नहीं करेंगे, तो सफलता हमारा जन्म से अधिकार है। तो सम्मानदाता बनना है, संतुष्ट मणि बनना है, और सब कुछ सफल करना है। और दासे क्या करेंगे? दयालु कृपालु ब्रह्मा बाबा समान, बाबा के समान हम सबको हर आत्मा के ऊपर बहुत रहम दिल बन करके, दयालु बन करके कुछ समय भी प्रकृति पर दया करो, व्यक्तियों पर दया करो। इतने कड़े संस्कार, इतनी कड़ी भोगनाएं, कुछ समय उनको शांति की, शुभ भावना की सकाश दो। जो दयालु आत्मा है ना, उनको इमर्ज करके, उनके समाचार से सुनती नहीं है। हम जब समाचार सुनते हैं, हम आपस में यही कहते हैं, सुन लिया हमने, चर्चा कर लिया, ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ, हमने क्या किया? हमने उनको धन से सहयोग दे पाए न, तन यहाँ बैठा वहां नहीं मदद कर सके। कम से कम उनको शुभ भावना है तो दे सकते हैं, शांति का दान तो दे सकते हैं। ऐसे समय पर साधन तो पहुंचाने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन उनकी मानसिक स्थिति को स्टेबल करने के लिए बहुत शांति की सकाश चाहिए, बहुत स्नेह की सकाश चाहिए कि हैं भगवान, कोई रक्षक है इनका। ऐसे समय पर मनसा सेवा करनी चाहिए, वो दयालु आत्मा ही कर सकती है। इसलिए बाबा का सबसे बड़ा गुण है दया। दया धर्म का मूल है, मूल पाप अभिमान। अगर हमारे संस्कारों में दया की भावनाएं आ गई तो वो दयालु आत्माएं कभी भी किसी को दोष दृष्टि से नहीं देखती, उनके दोष उनको दिखाई नहीं देते, उनके लिए हर समय शुभ भावनाएं, रहम की भावनाएं, कल्याण की भावनाएं रहती है। तो दयालु बन करके रहना और दाता बन करके, मुझे देना है, लेकर के देना नहीं है, ये कुछ दे तो मैं दूं, ये रिटर्न इच्छा नहीं रखना है। दाता बन करके जो मुझे है, बाबा ने कहा दो बच्चे तुमको दाता, एक दाता से लेना है और सबको देना है, व्यक्तियों से मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो दाता बन करके रहना, दयालु बन करके रहना और दुआओं का स्टॉक जमा करना। इस ब्राह्मण जीवन में सबसे अच्छा पुरुषार्थ हम कहें, दुआएं लेना और दुआएं देना। कोई भी आत्मा मुझा आत्मा को बद्दुआ न दे। ऐसे श्रेष्ठ कर्मों, इतने सुखदायी कर्मों, इतना समय पर साथ और सहयोग दिया जाए जो उसके दिल से दुआ निकले, थैंक्स निकले, भले ऊपर से बोले या न बोले। हमारी दादियां जो इतनी शारीरिक पेपर्स में पास हुई हैं, पास होकर के दिखा रही हैं, उसका मूल आधार दुआएं हैं, सबकी दुआएं। हम दादी से जब मिलते थे, दादी आपको दर्द है, आपको कोई तकलीफ, सबकी दुआएं, बाबा की दुआएं, परिवार की दुआएं। हम सभी भी इस ब्राह्मण जीवन में एक लक्ष्य लग करके आगे बढ़ें कि हमको सबकी दुआएं लेनी है, सबको दुआएं देनी है। सुख दो सुख लो, दुआ दो दुआ लो, संतुष्ट रहो संतुष्ट करो। तो आबा सादा अगर याद रखेंगे ना, याद रहेगी ना बातें, सरल है ना, लेकिन इसमें सारा ही सार आ गया है, सब धारणाएं इसके अंदर हैं। और ऐसी स्थिति बना करके चलो, स्पीड बढ़ जाएगी, लेकिन स्पीड से के साथ साथ ध्यान रखना पेट्रोल फुल होना चाहिए, टंकी खाली नहीं हो जाए। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास तो बहुत है, हमने बहुत पुण्य किए हैं, स्टॉक बहुत जमा है, लेकिन स्टॉक के अंदर कोई कीड़ा लग गया तो, इसलिए कोई कीड़ा न लग जाए। और बीच बीच में चेक करते रहो और चेक कराते रहो, पावर स्टेशन पर जाओ, अपना फुल चेकिंग करा दो, कहाँ कहाँ कोई स्क्रू लूज तो नहीं हो गया। जब स्पीड फास्ट होती है ना, तो स्क्रू भी लूज हो जाते हैं, तो ध्यान रखना कोई बुद्धि का स्क्रू लूज न हो जाए, नहीं तो उसमें कहीं न कहीं से लीकेज होगी और जो शक्तियां बाबा दे रहा है वो सब बह जाएंगी। तो लीकेज को बंद करके स्पीड को बढ़ाना है, बाबा को साथी बना करके समान और संपन्न बनना है। ओम शांति।